संभवापन्न एक आशय वाला यदि ऐसा व्यक्ति मिल जाए, अपना सब कुछ उनके चरणों में ले छाओ, तब तो वो प्रेम मिल जाएगा, अन्यथा प्रेम नहीं मिलेगा। लाख कोशिश करो ढूंढने, ठीक है, और आगे चलो, ऐसा भक्त मिल जाएगा तो क्या होगा? तब पांच प्रकार की जो भक्ति है उसमें से एक कोई मिल जाएगी। पांच प्रकार के जो भगवान के साथ में संबंध है, संबंध के बिना भक्ति अधूरी है। इसलिए सनक्ष नंदन का उनके प्रति, भगवान के प्रति जो शांत रति है, ये जीवों के लिए शांत रति में कृष्ण के प्रति निष्ठा होती है और किसी के प्रति निष्ठा नहीं होती है, इसलिए शांत रति को रस कहा गया। यद्यपि इसमें रस नहीं है किंतु रस इसको मान लिया, इसलिए कृष्ण के प्रति निष्ठा और किसी की हम कृष्ण ही सर्वोत्तम उपास्य है, यही सात अवधि है कृष्ण, तो इसलिए इसको मान लिया, ग्रहण कर लिया। इसलिए शांत रसी में जो कृष्ण के प्रति जो रति है ये हो गया साध्य, और सनक्ष नंदन का जो साधन है क्या, संसार से उपरत रह करके ध्यान मग्न होकर के, संसार असत है, चित्त को इससे दूर करके कृष्ण के प्रति ध्यान लगाए। और वो ध्यान कैसा होगा, वो ध्यान कैसा होगा, शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं, ये होगा शांताकार। लक्ष्मी जी पैर को लोट रही हैं, कर्णाप दिशाई विष्णु बैठे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर को पलोट, परम शांत एकदम इनका ध्यान होगा, कृष्ण को ही इस रूप में देखेंगे, तो ये हुआ शांत रति। महाप्रभु जी ने कहा इसका चलो आगे बढ़ जाओ आगे, बस इसको आगे बढ़ करके कहा, जिसे दास्य रति हनुमान की जो राम के प्रति जो सेवा है, यही यही साध्य है, माने वह प्रेम साध्य है, हनुमान का प्रेम कहलाता है प्रेम,
प्रेमो सेवा उत्तरा,
प्रेम सेवा। पहले है ज्ञान, ज्ञान भक्ति, इसके बाद में शुद्ध भक्ति, इसके बाद में प्रेम, प्रेम पर प्रेम, प्रेम आतुर, ये सब कुल। तो इसमें उन्होंने कहा जो सब शांत रति से श्रेष्ठ है सख्य भाव, भगवान को सख्य भाव से सेवा करो। हनुमान जी ने जो सेवा की ये है, यह है सिद्ध रगात्मिक है। अब इस हनुमान के अनुगत होकर के भगवान की जो सेवा की जाएगी ये रागानुगात दास्य होगा। प्रभु जी ने कहा, महाप्रभु जी ने कहा ये भी ठीक है आगे चलिए। तब उन्होंने बतलाया यदि जीव कृष्ण के जैसे सखा थे वैसे यदि किसी का उनके प्रति प्रेम हो जाए सख्त भाव से, तो वो भगवान वशीभूत हो गए, जो पहले कहा था वशीभूत हो जाते, अजितो अपि
जीतो,
इसलिए वो प्रभु वशीभूत हो जाएंगे उस प्रेम के द्वारा। यही प्रेम जो है बस सख्त सख्त प्रेम ही ये हो गया साध्य भगवान के प्रति ऐसा प्रेम। और साधन क्या है, उनका जैसा साधन सब समय उनकी सेवा में नियुक्त रहा, उन्हीं का नाम करो, उन्हीं का श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद दास सेवन इत्यादि। उन्होंने कहा यो है यो सर्वोत्तम, आगे कहा
ये उत्तम,
यो उत्तम उत्तम कहा। तब उन्होंने कहा यदि प्रेम करना है तो कृष्ण को अपना समझो, ममत्व लाओ भगवान के प्रति, और ममत्व ला करके उनकी सेवा करो, जैसे जसोदा जी सेवा करती हैं, नंद बाबा सेवा करते हैं, वात्सल्य रस की सेवा सर्वोत्तम, बने यह सर्वोत्तम। किंतु आगे कहा और उसके लिए दिखलाया कि नंद की मकरोत ब्रह्मण से एव महोदयम जसोदा च महाभागा पाप पपौ। अरे ये ब्रह्मण न किसी के से जन्मे है न इनका जन्म है, और जसोदा मैया का दूध स्तन पान करके अघा गए, तृप्त नहीं होते, तृप्त नहीं होते, और पीऊंगा करते। यज्ञ में उनके आहुति दी जाती है, वो समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं, तभी उनका पेट नहीं भरता। ये बेकार की चीज, उधर देखते नहीं। और यशोदा के माँ के स्तन पीने के लिए वो पर ब्रह्म अजन्मा इच्छा रही आप्त काम आत्माराम सब होते हुए भी आज उसके दूध को पीने के लिए ललक रहा। यह उनका जो प्रेम है यशोदा जी का, ये हमारे लिए साध्य है। और साधन क्या हुआ, उन्होंने जैसा किया साधन, अब उसी को अब रागानुगा में यहाँ साधन। और जो नहीं साधन कर सकता क्या करेगा, वैधि रूप में इन कथाओं को श्रवण करेगा। और जो वैधि भक्ति में करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासता, महाप्रभु ने यह सर्वोत्तम आगे कहा। उन्होंने कहा कांता प्रेम सर्वोत्तम सर्वशास्त्रदशा, कांता प्रेम कामता, कृष्ण की कामनाएं जिसे पूरी होती है संपूर्ण रूप से वो कांताएं हैं, और कृष्ण कांत हैं जिनकी कामना ये गोपियां पूरी करती हैं। भगवान को कोई कामना नहीं है तभी उनको कामना उत्पन्न हो जाती है, उन समस्त कामनाओं को कृष्ण को प्रदान करती हैं, उनका नाम है कांता। और कृष्ण वहां पर कांति, ये कांता, कांता भाव से ये कांता जो प्रेम है ये सर्वोत्तम है, इससे बढ़कर क्या होती है, यह साध्य सार हुआ। इसी के लिए उन्होंने श्लोक दिया, नायम शिवंगो नितान्त रतई प्रसाद सजोषिता अनिल गंध रुचो कुतान्यान रासो सवे भुज दंड गृहित कंठ लब्धा शीशां जो उद्गात प्रतिबल्लवी बड़े सुंदर। ये कृष्ण परब्रह्म होकर के जैसे छोटे बच्चे किसी के हाथ में लेकर के हाथ और झूल जाते हैं, आज कृष्ण की बाहें गोपियों की माला बन गई, वैजयंती माला बन गई, गोपियों का अपनी बाह रूपी, और न जाने कुछ मांगने लगे उनसे, आग्रह कर रहे हैं, मांग रहे हैं। भक्तों के बिना प्रेम के कृष्ण जीवित नहीं रह सकते, यही सर्वोत्तम कोटि का यह प्रेम है जो गोपियों के पास है। इसलिए गोपियों का प्रेम ये साधसार हुआ। और साधन क्या, वो पीछे बतला रही, पीछे बतला रही। उन्होंने कहा जैसे और भी आगे बढ़िए, ये साध साध है, सार है, आगे कुछ हो तो बोलिए। इसके आगे आज तक तो जगत में कोई इसका अधिकारी नहीं हुआ, साध इसके बाद में है क्या, राधा प्रेम ही
राधा प्रेम सर्व साध शिरोमणि,
सब प्रेमों का ये शिरोमणि, इसे बढ़कर के और कुछ नहीं। इसलिए राधा प्रेम हुआ असीम अनंत, और जहाँ पर उसकी शेष सीमा प्रेम की है, जिसके द्वान प्रभु वशीभूत एकदम हो जाते हैं। अब ये यहीं पर खत्म करके बोलते हैं, नपारे हम, मैं आप लोगों का अच्छी ऋणी हूँ गोपियों का, मैं इसके बदले में कुछ दे नहीं सकता। इस प्रेम अत्यंत निर्मल दाग रही, ऐसे प्रेम के द्वारा ही मैं सब प्रकार से वशीभूत होता हूँ, यही सबसे वशीभूत अजीतो अपि जीतो अपि असि तेह त्रिलोकम, ये वहाँ पर जा करके समाप्त हुआ। कृष्ण ने कहा यहीं पर साध्य की समाप्ति यही पसंद। उन्होंने कहा कि कुछ और रह गया है मालूम, हमारी तृप्ति नहीं हो रही, आगे और कुछ इसमें है तो बतलाइए। कहा जी इसके बाद में सुनने वाला कौन जन, कोई जन हो सकता है, मालूम होता है कि आप वही हैं, ये तात्पर्य, वही एक जन, दूसरा जन नहीं है, वो जन एक जन है कौन, वही स्वयं। तब उन्होंने बतलाया, उन्होंने कहा कि राधिका जी का प्रेम सर्वोत्तम है, किंतु उसमें एक संशय बतलाया, यदि साक्षात रूप में गोपियों को छोड़ करके और राधा जी के साथ में चले जाते तो समता जी या राधा जी के वशीभूत है, वो तो चोरी करके चले गए। तो उन्होंने कहा जैसे इसका उत्तर जयदेव गोस्वामी ने दिया है। राश में सभी गोपियां थी, सबको सामने देखते हुए भी उनको सबको छोड़ करके सम्यक सार जो लीला है, इसलिए वो सब जो सम्यक रूप में सार जो लीला है क्या है, रास ये राधा जी के साथ सब कोटि गोपी नारी हरि से नारी लो श्री कृष्ण, कोटि कोटि करोड़ों गोपियां भी कृष्ण के चित्त को हर नहीं सकी, सामने से सबको छोड़ करके राधा जी को लेकर के चल पड़े। इसलिए राधा प्रेम शेष सीमा इससे बढ़कर। फिर उन्होंने चार चीज पूछे, प्रेम का कृष्ण का स्वरूप, राधा जी का स्वरूप,
प्रेम
अंत में उन्होंने एक चीज बतलाया, जे लागी आइलाम तुम्हार स्थाने से ही सब तत्व वस्तु है मोर ज्ञान, जिसके लिए मैं आया था आपके पास में वो सभी मुझे मिला, मैं तुम्हारे पास में आया। गुरु कौन है, किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र कहनु नय जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु। गुरु सुंदर होना चाहिए, जुआ होना चाहिए, रोगी नहीं होना चाहिए, अंधा लंगड़ा नहीं होना चाहिए, ये गुरु का लक्षण कुछ बतलाए कह किंतु कहना कह रहे हैं जैसे ये किन के लिए है, स्थूल बुद्धि लोगों, शरीर से और मन से उनका कोई भी संबंध नहीं है। किवा विप्र, विप्र हो न्यासी माने सन्यासी हो, शूद्र हो अथवा किसी भी जाति के क्यों न हो, जिनका जाति का अभिमान ही नहीं है वो व्यक्ति होना चाहिए। जिनको ये जाति का अभिमान है कि मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का हूं, उनको आत्म तत्व का भी ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए कृष्ण तत्ववेत्ता जयी से गुरु, कृष्ण के तत्व को जानने वाले ही व्यक्ति गुरु है। किंतु इनमें भी तत्व के जानने की अपेक्षा तत्व के साथ साथ में भगवान के रस तत्व का ज्ञान होना चाहिए, और उसमें से एक होना चाहिए। और सर्वोत्तम कौन है, गुरु राधा जी के भाव का अनुसरण करने वाला, उनकी सेविका का भाव रखने वाला ही व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ। कैसे यह भाव मिलेगा, इसका साधन क्या, इस साधन को भी उन्होंने बतलाया। पहले बतलाया कृष्ण ही सर्वोत्तम साध्य तत्व है, सबसे सर्वोत्तम उपास्य तत्व, और राधा की उपासना सर्वोत्तम उनके प्रति है, ये चीज बतलाया। और कृष्ण का तत्व बतलाया, राधा जी का तत्व बतलाया, और उनका उनके प्रति जो प्रेम है यही साध्य शिरोमणि है। किंतु उनकी सेवा कैसे मिलेगी, इन्होंने राधा कृष्ण एक लीला अति गूढ़ तौर अत्यंत गूढ़ है, दास वात्सल्य आदि भावे ना है गोचर, शांत की तो बात ही क्या, दास सख्य और वात्सल्य के द्वारा ये नहीं दिखती, इसके द्वारा भी उनकी महिमा नहीं जानी जाती। सब एक सखी गने रिहा अधिकार, केवल मात्र सखियों का इसमें अधिकार है। कौन कह रहा, जिनका आज तिरुभाव है रामानंद जी कह रहे हैं, सखी है तो है यही लीला विस्तार, एकमात्र सखियों से ये लीला का विस्तार होता है, सखी बिना यही लीला पुष्टि नहीं है, सखियों के बिना इस लीला की पुष्टि नहीं होती। सखी लीला विस्तार या सखी आस्वाद है, इस लीला का विस्तार करती हैं कौन, सखी, और आस्वादन कौन करती हैं, वही करती है। सखी बिना यही लीला अन्यत्र नहीं गति, सखी भावे जे तारे करे अनुगति, राधा कृष्ण कुंज सेवा साध्य यही यही पाए से ही साध्य पाईते आर नहीं उपाय। साध्य क्या हुआ, राधा जी का कृष्ण के प्रति प्रेम, और उसको पाने के लिए सखी का भाव, यदि दिन रात को इसी की अनुगति, अनुगति माने वही चिंतन, वही श्रवण, वही ध्यान, वही जहाँ पर लीला हुई वहीं का जाना आना, ऐसे भक्तों का संग जो उन्हीं के ऐसे हो गए, बस यही इसका सार, और दूसरा कोई नहीं। ये गुप्त एक उन्होंने किसी भी शास्त्र में ऐसा स्पष्ट रूप से न रामायण में, न महाभारत में, न गीता में, न भागवत में, भागवत में भी नहीं लिखा गया, कहीं नहीं किसी भी साहित्य में इतना स्पष्ट रूप से। हाँ, गोस्वामियों के ग्रंथों में, रूप गोस्वामी के ग्रंथ में, जी गोस्वामी के ग्रंथ में, सनातन गोस्वामी के ग्रंथों में, उन्हीं ग्रंथों से लेकर के इन्होंने, इसलिए आज तक जो चीज जगत को नहीं दी गई उस चीज का इंगित और प्रत्यक्ष रूप में उनको बतलाया। राधा कृष्ण ही एकमात्र आराध्य हैं। राधा जी का कृष्ण के प्रति यह जो प्रेम है यही सर्व साध चूड़ामणि है, उसको हम पा नहीं सकते मैं, किंतु हम लोग सेवा कर सकते हैं। यह कैसे मिलेगा? जिनका यह भाव सिद्ध है ऐसे लोगों से, जो राधा कृष्ण की सखियां हैं या उसके अनुगत्य में जो सेवा कर रहे हैं और उसकी साधना हुई है, वही एकमात्र इसका अधिकारी है, उसी के पास में मिल सकता है। राधा कृष्ण से साध पाईते आर नहीं पाए, बस इस पाने का यही केवल मात्र उपाय है। यद्यपि राय प्रेमी महाभागवते तार मन कृष्ण माया नारे आच्छादित तथापि प्रभु इच्छा परम प्रबल जान ले राय मन हईल टल। राय कहे आमी नट तुम्हें सुखा। इसके बाद और भी जो पूछा तो इसके बाद ने बतलाया उसी का उदाहरण, जो प्रेम की अंतिम सीमा कहाँ है राधा प्रेम की, तब उसी के लिए पहला ही राह नैन भंग। नैन भंग माने क्या? एक क्षण मात्र में दृष्टि मात्र से उनके प्रति कृष्ण के प्रति प्रेम, और वो बढ़ते बढ़ने में कहाँ तक बढ़ गया कोई उसके लिए जगह नहीं, तब भी बढ़ रहा है। इस तरह से दोनों मिलकर के एक हो जाते, रंग और रंगी, लाख और रंग, लाख को गर्म कर दो पिघल जाएगा, उसमें लाल रंग दे दो या कोई भी रंग दे दो वो सदा के लिए उसमें हो जाएगा, जल से धोने से भी। ऐसा ही दोनों का, प्रेमी और प्रेमिका का चित्त दोनों जतु के समान दोनों गल करके एक हो जाए, यही सिद्धि एक तरह से, यही इसी को समझना या अनुभव करना या प्राप्त करना जीवों के लिए परम पुरुषार्थ है, इससे और कुछ बढ़ करके नहीं है। वृंदावने अप्राकृत नवीन मदन काम गायत्री काम बीजे जाग पास। अब उनके अधीन रह करके क्या कैसे उसका साधना करेंगे, तो साधन भी बतलाया सूत्र रूप में, जो कोई जाने ही नहीं, पढ़ लिया सब सास सात कांड रामायण पढ़ करके, रामायण कितना कांड होता है, तो सात कांड रामायण हो करके पूछते हैं ये सीता किसके बाप थे,
सीता किसके पिता,
हाँ सीता जी किसके बाप हैं ये पूछ रहे, तथा सात कांड रामायण पढ़ा कि नहीं, वैसे ही चैतन्य चरितामृत पढ़ करके भी जिनके समझ में ये कुछ नहीं आता, इसलिए कहते हैं वृंदावन अप्राकृत नवीन मदन काम गायत्री बीजे,
काम गायत्री काम बीजे,
काम बीजे जा रूप, काम गायत्री और काम बीजे, काम बीज पहले काम गायत्री, इनके द्वारा जिनकी आराधना, ये आराधना का मूल मंत्र है, जो इसके द्वारा समझ बूझ करके आराधना करेंगे उनके लिए तो स्पष्ट हो जाए, नहीं तो ये पढ़ करके भी कुछ नहीं दी समझेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। पुरुष जोशी किंवा स्थावर जंगम सब चित्त आकर्षक साक्षात मनमत मनमत, ये कृष्ण है। पुरुष स्त्री स्थावर जंगम जो जितने भी प्राणी हैं सबके मनमत के भी ये मनमत, मनमत कौन है? प्रद्युम्न
अप्राकृत,
ये मनमत है और ये मनमत के भी मनमत है, मनमत मनमत, ये जगत के जो ये हैं काम, ये कौन है? उसकी छाया है,
प्रद्युम्न छाया,
प्रद्युम्न की चरण नख की चंद्रिका की छाया, वो भी छाया माने अंधकार जहाँ पर है उसको छाया, जहाँ पर वो नहीं है उसके बदले में जो होता, जैसे सूर्य नहीं है तो क्या देखता है अंधकार, ऐसे जहाँ पर उनका वो पदनक नहीं है वहाँ पर ये विराजमान ये जगत के कहा, इसलिए उनको अंधकार में कहा। उनके भी कामदेव के भी चित्त को मथन करने वाले उनकी नख चंद्रिका है, और वे भी मनमत जो प्रद्युम्न है उनके भी मनमत को भी मनमत कृष्णचंद्र जी, इसलिए वही जगत के आराध्य सर्व आराध्य हैं, उनके प्रति ऐसा भाव हो। आज ही तक है, 8 बज गया करीब, अरे आज वहाँ जाने की बात थी
आए नहीं।
निरंदनशलाकया चक्षुन्मील जेन तस्म श्रीगुरव नम छाकतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य पति पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे श्री गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्य द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोऽस्मि तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमां चरणम्।
भगवत रामपद से रसायन का एक श्लोक हम लोगों ने पाठ किया, वथा प्रातः ब्रजात ब्रजत अविशतश्च सायं गोभी समं क्वणतोयस्य निशम्य बेण निर्गत्य तूर्णम अबला पतिभूर पुण्य पश्यन्ति सस्मित मुखं सदया। हम लोगों ने इसकी कुछ कुछ व्याख्या की, सनातन गोस्वामी का भी विचार इसमें श्रवण किया। उन्होंने वक्त्रम ब्रजेश सुतयो अनुवेम जुष्टम जैवा निपीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम इससे तुलना देते हुए बतलाया व्याख्या की। ये कह रही हैं ब्रज की माथुर स्त्रियां परस्पर ब्रज की स्त्रियों का सौभाग्य बदला है। परीक्षित जी अपनी मैया को कह रहे हैं और जैमिनी ऋषि जनमेजय इत्यादि को बतला रहे हैं और सनातन गोस्वामी हम लोगों को बतला रहे हैं। कथा तो हो रही है नित्य सिद्ध भूमिका की, किंतु साधक उसको श्रवण करके उन लीलाओं को किस रूप में स्मरण करेगा ये विधि दे रहे हैं। जो लोग निष्किंचन हैं अकिंचन हैं, जिनको कोई समस्या ही नहीं है जगत, बस समस्या है कृष्ण प्रेम कैसे लाते हैं, और कोई समस्या नहीं और कोई इच्छा नहीं, बस यही, उनको ऐसी भीषणतम गर्मी भी नहीं लगती, ठंडी भी नहीं लगती, उनकी बस समस्या है कृष्ण प्रेम वैसा कैसे। वो लोग इन लीलाओं का स्मरण करें, विशेष करके जैसे सनातन गोस्वामी जी ने उसकी व्याख्या की है, जैसे नित्य सिद्धा अथवा काय विवाह गोपियां ब्रज में कैसे रहती हैं, कैसे विचार करती हैं, उसको मथुरा की नगरियां स्त्रियां देख रही हैं और बतला रही हैं। ये प्राप्त इसकी हमने व्याख्या कर दी है, फिर से मैं थोड़ा सा बतला देता हूँ। प्रातः ब्रजात ब्रजतः, प्रातः काल में गोपियां उठती हैं, चिंतन क्या कर रही। उठते ही हम लोग जो चिंतन करते हैं, कैसे रहेंगे, कल क्या हुआ, आज का क्या करेंगे, ये सब प्रोग्राम बैठ करके बनाते हैं गोपियां। ये प्रोग्राम उसमें रात में या कल क्या क्या बातें हुई, कृष्ण से हम कैसे मिले, कौन कौन सी लीलाएं हुई, बस सवेरे यही उनका चीज। और कोई संसार की बातें नहीं याद, हम लोग संसार की बातें याद आती हैं। साधक लोग इसको दूर रखने की चेष्टा करते हैं, और वही सब बातें जो कल हम लोगों ने श्रवण किया उसका चिंतन कर, तो गोपियां उसी का चिंतन कर रही हैं। प्रातः प्रजात प्रजतः, प्रातः काल में तो प्रातः ब्रजात ब्रजतः, कृष्ण ने अभी जग करके क्या किया, कैसे गोदोहन कार्य किया, कैसे मल्ल क्रीड़ा के लिए अभ्यास कर रहे हैं, गोपियों का क्या हुआ, गोपियां क्या कर रही हैं, राधा जी कैसे उत्थान किया, उनकी सेवा इत्यादि के संबंध में बस यही उनकी परिपाटी की चिंता। कृष्ण के ब्रज से निकलने के पहले यशोदा मैया की भेजी हुई कुंदलता जी जावट में जाती हैं और छल बल कल से वहां से श्रीमती जी को लाती हैं, रसोई बनती हैं, जिस जो राधा जी कृष्ण के विरह के आग से पसीने से तरबर हो जाती हैं और 1000 चूल्हे जला करके रसोई बना रही हैं और उस समय पसीना नहीं, ठीक विपरीत भाव। रसोई बनने के बाद में नंद बाबा, उपनंद बाबा और सब लोग आते हैं, लाखों संख्या में ये सब उनके सखा लोग आ जाते हैं, सबके साथ में बैठ करके भोजन इत्यादि होता है, बड़े रंग से भोजन होता है। इतने लोग कहाँ से खाएंगे, व्यवस्था कैसे है, जोगमाया इसका समाधान करती हूँ, स्थान की, भोजन की, सब विषयों की सब समाधान वो करती हूँ। इसके बाद में भोजन समाप्ति के बाद में तांबूल बिटका इत्यादि ग्रहण करके कुछ समय के लिए विश्राम करते हैं, विश्राम में भी दोनों का मिलन होता है। इसके बाद में कृष्ण अपने सखाओं को लेकर के ब्रजात ब्रजतः, गायों काट कोटी कोटी गायों को लेकर के ब्रज से निकलते, जो यशोदा मैया कभी अंक में लेती हैं, कभी रोती हैं, कभी श्रृंगार करती हैं, ब्राह्मणों के द्वारा उनका अभिषेक कराती हैं, छोड़ना ही नहीं चाहती। कृष्ण शपथ देते हैं जब छोड़ दो मैया, गायें और सखा लोग नहीं था। उस समय में जो यशोदा मैया थोड़ी देर के लिए रुक जाती हैं, फिर जब कृष्ण आगे बढ़ जाते हैं फिर दौड़ करके उनको पकड़ लेती हैं, स्तन से दूध चुचुआ रहा, आंखों से आंसू झर रहे, बड़ी मुश्किल से वो रुकते हैं। अब नंद बाबा आ गए, यशोदा मैया को तो रोका, अब नंद बाबा को कैसे, उनको भी किसी तरह से। इसके बाद में गोपियों से मिलते हुए और चले जाते हैं और यहाँ पर रह जाती हैं। तो उस समय में उनका जो मिलन है इसका ये दिखला रहे हैं। पहले में दिखलाया था विरह, सबसे पहले मिलन, इसके बाद में विरह, अब फिर मिलन के लिए दो बात दिखला रहे। प्रजात प्रजात अविशत सायन, जब सायन में लौटते हैं सायकाल में गोपी गायों को लेकर के, उस समय में फिर मिलन होगा। उस समय में एक सेकंड का भी, एक पलक भी उनके लिए कोटि कोटि युग के समान दिखता है। इसलिए अब निकट आ गए ना, दर्शन कर रही हैं। ये जो गिर जाता है उनसे सह्य नहीं होता, और ब्रह्मा जी को कहती हैं जो तू सृष्टि करना नहीं जानता। यदि हम सृष्टि कार्य करने वाली होती तो कृष्ण का देखने के लिए कोटि कोटि आंखें बना देते, उसमें बिना पलक का बनाती। कहाँ कृष्ण का सौंदर्य रूप माधुर्य, और कहाँ ये निगोड़ी आंखें पलकों से युक्त। इस तरह से आते और जाते समय दोनों के समय मिलते, और बीच का समय विरह से परस्पर कथाओं में मिल लग जाता है उनका। गोभी समम कड़े या तो अश निशम्बेन निर्गत तूर्णम अबलापति भूरि भूरि पुण्य सस्मित मुखम पश्यन्ति सस्मित मुखम सदयावल। जिन्होंने कृष्ण का यह दर्शन किया प्रेम पूर्वक जो कटाक्ष है उनके तरफ में कर रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं, उनके तरफ में देख रहे हैं, कोटि कोटि गायें देख जा रही हैं, सभी कृष्ण के तरफ में आंखें लगा करके और कान ऐसे करके खड़ी हैं। सखा लोग उनको साबसी देते हुए साधु साधु कृष्ण को कह रहे हैं और चारों से घेर करके चल रहे हैं। इस समय जो कृष्ण का रूप देखा उन्हीं की आंखों की सार्थकता है। ये करें ये हम लोगों का दुर्भाग्य है, संभव नहीं हम लोगों के लिए। क्यों? यदि हमारे पति हैं यहाँ, ये इनको पता लग जाए ये हम अटारी से भी कृष्ण को देख रहे हैं, तो वो हमें गाली गलौज करें, शासन करें, हम लोगों के लिए यहाँ सब। और यदि नहीं भी कहें तो स्वच्छंद मुक्त वातावरण में कृष्ण का यह दर्शन करना, यह भाव वो गोपियों के लिए ही संभव है जिनके अंदर में वैसे प्रेम है, दूसरों के लिए संभव पर नहीं। कैसा प्रेम है? कृष्ण सब प्रेमों का ऋण चुका देते हैं। जे जथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि, मम वार्ता अनुवर्तन्ते मनुष्यापात सर्वस्व। कहते हैं कि जो जथा माम प्रपद्यन्ते, जो जितने ही रूप में अनुपात के रूप में जितना ही मेरा भजन करते हैं, जिस रूप में मेरा भजन करते हैं, जिस भावना से भजन करते हैं, जितने आंशिक रूप में करते हैं, पूर्ण रूप में करते हैं, कृष्ण प्रतिज्ञा करके बतलाते हैं मैं उसके अनुसार में भजन करता हूँ, भजन का फल दिया करता हूँ। राम रूप में भी उन्होंने ऐसा ही कहा, एक बार यदि हमारा प्रपन्न हुआ हाँ तो मैं क्या करता हूँ, अपने को दे देता हूँ, अपने को दे देता हूँ। कहते हैं किंतु कर नहीं पाते। प्रतिज्ञा करनी एक बात है और देना एक। प्रपन्न हुए ना, रामचंद्र जी कहते जो हमसे एक बार प्रपन्न होकर के कह देता है मैं अपने को भी दे देता। तो सीता जी प्रपन्न तो हुई नहीं कि थी, सीता जी को कौन छोड़ दे? ऐसे निष्ठुर व्यक्ति, उनकी प्रतिज्ञा कहाँ रही? छोड़ दिया। लक्ष्मण जी को क्यों छोड़ दिया? भले ही परमार्थिक रूप में न छोड़ें, हृदय से न छोड़ें, लोगों को दिखलाने के लिए छोड़ दिया। कृष्ण भी प्रतिज्ञा करते हैं, न पा रहे हैं हम, ये इस श्लोक में न पा रहे हैं हम निर्वस्त्र भक्त, समस्त भगवत अवतारों की यही बात है। भक्तों के अनुरूप वो नहीं कर सकते हैं भगवान, असमर्थ हैं, समस्त भक्तों के ही उनको ऋणी रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा? किसी भी भक्त की पूर्ण इच्छा नहीं पूर्ण करेंगे। क्यों? वो कहेंगे जी आप सबको छोड़ करके, जैसे मैं आपको सबको छोड़ करके स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति एक निष्ठ से आपके चरणों में मैं आश्रय लेता हूँ, आप केवल हमारा ही भजन कीजिए और किसी का मत करें। करेंगे? भगवान चाहे राम हो कृष्ण हो कोई भी अवतार हो कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं भक्तों का पराधीन हूँ, वे हमारे हृदय हैं, मैं उनका हृदय, तभी मैं उनका पराधीन हूँ। समस्त अवतार में विशेष करके कृष्ण रूप उनके पराधीन हो जाते हैं, अनुरूप भजन नहीं कर पाते। यदि कुछ कर भी दिया, शांत दास्य सख वात्सल्य तक कुछ कर दिए, किंतु विशेष करके मधुर रस में गोपियों के यहाँ आकर के वो ऐसी प्रतिज्ञा कर देते हैं, बतलाते हैं मैं तुम नवकारिणी हूँ, एक जन्म के लिए नहीं। स्वसाध कृत्यम विबुधा जुषा पिब माँ भजन दिर्जर गृह श्रृंखला समृष्ट तद वह प्रत्याद। मैं तुम लोगों का जो साधु कृत्य है, विबुधा युवास विबुधा माने देवताओं की लंबी आयु को पा करके भी, और भी एक अर्थ इसमें बतलाएंगे हम लोग, उसकी पीछे से व्याख्या करेंगे, बहुत ही सुंदर सुंदर व्याख्याएं ये बतलाएंगे। पहले बात बतलाया साधारण रूप में, ये समझ लीजिए गोपियों ने कहा जैसे आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, आप तो हमने सुना है गर्ग जी के मुख से जो आप तो भगवान ही हैं, और आप भी कभी कभी डीग हाँकते हैं जो मैं भगवान हूँ। तो ठीक है, हम लोग कहते हैं जे छाछे आप भगवान हैं तो आप ऋण चुका लीजिए हमको, हमारा ऋण चुका दीजिए। अजय जी कैसे चुकाऊं? तुम लोग कहेगी, हम कहेंगे ये बर मांगो, तो तुम लोग कहेगी जी अपनी सेवा दीजिए, तो और अधिकतर ऋणी होती चली जाए, हम ऋणी होते चले जाए। तुम लोग कहेगी हम लोग एक निष्ठ हैं आपके प्रति, आप ही हमारे प्रति एक निष्ठ हो जाइए, सब भक्तों को छोड़ करके हमारे प्रति, अब जैसा हम तुम्हारा भजन करते हैं तुम भी ऐसा करो। किसको छोड़ेंगे? अब कृष्ण विचार कर रहे हैं जे अच्छा किसको छोड़ेंगे? किसी को नहीं छोड़ पाएंगे। यहाँ तक की बात क्या, साधारण एक गजेंद्र है, सुदामा जी हैं, शबरी जी हैं, हनुमान जी हैं, कृष्ण लीला में और भी तो द्वारका की महिषियां हैं, पांडव लोग हैं, अच्छा सबको छोड़ दो, द्रौपदी को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, छोड़ ही नहीं सकते, नहीं तो उनके ऋणी हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं मैं तुम्हारा ऋणी हूं। यहीं पर दिखलाया गोपियों ने देखा जे कृष्ण अपने वाक्चातुरता से हमें परास्त करके भी अंत में इसके द्वारा हम लोगों को खरीद लिया, ऋण चुका दिया। कैसे? यदि सब प्रकार से कोई व्यक्ति हार जाए और ये कह दे, हाथ उठा दे, अनकंडीशनली हमने सरेंडर आपके यहाँ कर दिया, तो कृष्ण यहाँ पर बिना शर्त के ही गोपियों के यहाँ परास्त हो करके और उनका ऋणी बन गए। गोपियाँ कहने यही आपका, आपकी नम्रता और ये भाव, आपने यही पर हम लोगों को परास्त कर दिया, जीत करके भी हम यहीं पर हार जाते हैं। आपका शील और ऐसे भाव जो इतना हो करके भी आप दीनहीन बन जाते हैं। देखो ये भगवान भी प्रेम से ऐसे दीन ही हो जाते हैं, हम लोगों के लिए कैसा होना चाहिए? इसलिए ये जो दीनता है, नम्रता है और प्रेम, ये पर्यायवाची शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द परिपूरक तो है ही है, दीनता नहीं होगी प्रेम नहीं होगा, प्रेम है दीनता नहीं है यह असंभव है, एक ही चीज के दो पहलू हैं। इसलिए जहां पर प्रेम होगा ये दीनता जरूर नम्रता होगी, जितना इसका परिमाण बढ़ता जाएगा श्रद्धा से बढ़ेगा, श्रद्धा अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, जितना ही ये बढ़ता जाएगा नम्रता उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। एक बछड़ा है छोटा सा, बछड़ी चर रही है, अभी पहली बार मैया का स्तन छोड़ करके अभी सूंघ रही है कोमल कोमल तृणों को, अब स्वभावी उनका अंकुरित एक दुर्वा घास थी, वो जब ही लगाया उसको मुख से सूंघ रही थी, इतने में वो घास का जो अंकुर था वो लग गया और उससे उसको बन गया घास। राधा जी ने देखा जी इसके ये तो लाल हो गया, ये बस झट उसको गोदी में उठा लिया और उपचार करने लग गई। कितनी दयालु है बछड़े के प्रति, तो भक्तों के प्रति कैसी दयालु होंगी। इसलिए कहते हैं सुसाध कृत्या, गोपियों के प्रेम में तनिक भी कहीं कोई स्वार्थ नहीं है, संसार में प्रेम नहीं, संसार में सभी स्वार्थ है, प्रेम नहीं। यदि किसी कोई साधक भी है तो भावावस्था नहीं होने तक उसमें जरूर स्वार्थ किसी न किसी रूप में रहेगा, बिना स्वार्थ का ये संसार नहीं चलेगा। इसलिए जो प्रेम भी कहते हैं प्रेम, वो प्रेम नहीं है, प्रेम अंधा एक लोहे में जंग लगा हुआ जैसा होता है, ऐसा ये काम है जगत का प्रेम, और वो शुद्ध स्वर्ण है चिंतामणि के समान है, दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। इसलिए जगत के लोग कल्पना नहीं कर सकते जो प्रेम किसको कहते हैं। अधिकांश लोग पूछते हैं आप लोग भगवान का भजन किस लिए करते हैं, वो अपने जैसा देखते हैं, वो सोचते हैं हम लोग कोई काम करते हैं स्वार्थ के, तो ये लोग भगवान का भजन करते हैं किस लिए, दुखों की निवृत्ति के, आत्यंतिक दुख निवृत्ति के। आत्यंतिक दुख निवृत्ति कैसे होगी, जब तक जन्म और मरण होता रहेगा तब तक नहीं होगा, इसलिए जन्म मरण का जो चक्र है जिसको भव रूप कहते हैं ये दूर हो जाए मुक्ति हो जाए तो इसको कहते हैं मुक्ति कहते हैं, तो ये मुक्ति में अपना सुख है ठीक कहते हैं वो। किंतु जो वैष्णव लोग होते हैं अपने सुख के लिए भगवान का भजन नहीं करते, इसलिए करते हैं अपने उपास्यों को सुख दे सकें उनकी सेवा कर सकें इसके लिए, इसलिए जगत के लोग नहीं समझ पाते हैं। कहते हैं आप भगवान की सेवा चाहते हैं वो किस लिए, वो भी अपने सुख के लिए, नहीं मत समझो भगवत प्रेम ये नहीं, इसे बहुत ऊपर कोटि गुण ऊपर है जिसकी जगत के लोग कल्पना नहीं कर सकते। इसी को मैत्रेयी और कात्यायनी संवाद में उपनिषदों में बतलाया, कात्यायनी और मैत्रेयी दोनों जब प्रौढ़ा हो गई उनके पति याज्ञवल्क जी जनक के गुरु भी हैं, उनके राज पंडित भी हैं, वो घर में कुटिया में लौट करके गए, बोले मैं अब बहुत वर्षों का हो गया, अब आप लोग मुझे आदेश दीजिए मैं भजन करूं कुछ जा करके ईशा, और हमारा जितना धन है दो भागों में मैंने विभाग करके आप लोगों को दे दिया, आप लोगों के बेटे हैं बेटे आपके पास में रहेंगे, अब बेटे भी बड़े हो गए हैं देखे सुनेंगे, और जितना हमारे पास में स्वर्ण मुद्राएं थी सब विभाग कर दिया, गायों का गोधन भी हमने बाग बगीचे भी तुम लोगों को दे दिए, अब तुम सुख से रहो। बड़ी वाली तो खुश हो गई, ठीक है आप जाइए भजन के, और दूसरी बोली मैत्रेयी आप हमारा एक प्रश्न का उत्तर दे करके जाइए, ये सब जो चीजें हैं जो आपने दिया पुत्र धन गोधन भवन बाग बगीचे सब कुछ आपने दिया, इसे लेकर के हम लोग सुखी हो सकती हैं कि नहीं? और यदि इसी से हम सुखी हो सकती हैं तो आप भी इसमें सुखी हो सकते थे, आप छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? प्रश्न उसका ये है। यदि हम ही आप हमको देकर के जा रहे हैं और इसमें हम यदि सुखी हैं तो फिर आपको भी इसमें सुखी होने जा, आप छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? किंतु ये प्रश्न किया नहीं, ये उचित नहीं, इसलिए प्रश्न क्यों लिखते नहीं किया, इसमें मैं सुखी रह सकूंगी? उन्होंने उसको आलिंगन कर लिया, यथार्थ में तुम ही हमारी धर्म अर्थांगिनी हो, धर्म पत्नी। देखो इसे कोई भी सुखी नहीं रह सकता, जगत में जितने भी लोग हैं वो स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। गाय दूध देती है इसलिए प्यारी है, स्त्री सुंदरी है घर का काम सब काम संभालती है इसलिए प्रिय है, पति हमारी सब इच्छाओं को पूर्ण करता है इसलिए प्यारा है, बेटा भी हमारी सेवा करता है या भविष्य में करेगा या पुण्य दान इत्यादि जो करेगा सब दान पिंड दान इसलिए हमारा प्यारा है, वंश चलाएगा भविष्य के लिए। इसी तरह से आयरन चेस्ट हमारा प्यारा है किस लिए? हमारे सुख की संपत्ति को दूसरा न ले ले, उसमें रख के रखते हैं। पेड़ किस लिए प्यारा? वो फल देता है, जिस पेड़ में फल ही नहीं लगे, जिस गाय में को बच्चा ही नहीं हो, जिस स्त्री को बेटा ही नहीं हो, सुंदरी भी न हो, वो प्यारी होगी? ये जगत ऐसा है।